بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام پر اسرائیل کا ہوائی حملہ۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ گزشتہ جمعرات کو اسرائیل کے جنگی طیاروں نے دارالحکومت دمشق، یعنی شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک سائنسی تحقیقاتی مرکز پر حملہ کیا۔ اس حملے میں کم از کم دو افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین اور روس نے مذمت کی، اسلامی جمہوریہ ایران اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور خود لبنان کے حکام نے اور اسی طرح عرب لیگ نے اس حملے کو ناقابل قبول بتایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت جب اس تحقیقاتی مرکز پر دہشت گردوں کی طرف سے، جو کہ شام میں برسر پیکار ہیں اور جنہیں امریکہ، مغرب، اسرائیل اور بعض عرب حکومتوں کی حمایت حاصل ہے، کئی بار قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے، تو اب اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ کس بات کا پتہ دیتا ہے، اور اس طرح کے حملے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور اس کے کیا دور رس نتائج نکل سکتے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، جس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی عالمی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب کو، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ممتاز دانشور اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر جناب ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ ان تینوں معزز مہمانوں سے گفتگو ہوگی، مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
فلسطین کے علاقے پر غاصبانہ قبضہ کر کے خود کو ناجائز وجود بخشنے والے اور علاقے کے ملکوں کی سرحدوں کی آئے دن خلاف ورزی کرنے والے اور ان کے علاقوں پر حریصانہ نظریں رکھنے والے اسرائیل نے شام کے اقتدار اعلی اور فضائی حدود کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک کے ایک سائنسی تحقیقاتی مرکز پر حملہ کیا، جس کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے یہ حملہ بدھ 30 جنوری کو انجام دیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایک فوجی کارواں پر کیا گیا جو ہتھیار کی کھیپ لے کر شام سے لبنان جا رہا تھا۔ شام کی فوج نے اس دعوے کو کھلا جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اس حملے سے شام کے قومی اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کی ہے۔ شام کی پارلیمنٹ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت سے ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت دہشت گرد گروہوں کے ساتھ براہ راست ساز باز کر کے شام کی بنیادی تنصیبات اور سائنسی مراکز کو تباہ کر دینے کے در پہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ مغربی اور عرب ممالک کی مشترکہ سازش کا نتیجہ ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ محمد کامل عمر نے صہیونی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی عرب اور اسلامی ملک کی سرزمین پر کی جانے والی جارحیت قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ لبنان کے صدر میشل سلیمان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ علاقے میں اسرائیل کی طرف سے جاری مخاصمانہ پالیسیوں کی ایک کڑی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے کہا کہ شام پر ہونے والا یہ حملہ تمام مسلمانوں اور عربوں کی توہین ہے۔ عرب لیگ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں شام کے اندر دہشت گرد تنظیموں کی پے در پے شکست سے امریکہ اور ان عرب ملکوں پر بوکھلاہٹ طاری ہے جو ان تنظیموں کی مدد سے شام کی حکومت کا تختہ پلٹ دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے زیادہ سراسیمگی میں اسرائیل مبتلا ہے جو اسلامی مزاحمت میں کلیدی کردار کے حامل شام میں اپنے ہم نواؤں کے حکومت تشکیل پانے کے خواب دیکھ رہا تھا، چنانچہ وہ ایک کے بعد دوسری حماقت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شام کی حکومت مارچ 2011 سے دہشت گرد گروہوں سے برسر پیکار ہے اور ملک بد امنی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اس پیکار میں شامی فوج اور عوام نے ہزاروں افراد کی قربانی دے کر سر انجام دہشت گردوں کو کمزور کر دیا ہے اور متعدد علاقوں میں وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے عالم میں اسرائیل نے شام کے خلاف گستاخانہ حرکت انجام دی ہے، جس سے شام کی حکومت کے اس دعوے کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے کے تحت اور ترکی، قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک کی مدد سے شام میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے شام کی خود مختاری، اس کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ وہ مسئلہ اور یہ موضوع ہے جس پر پوری دنیا نے تقریباً اپنی برہمی کا اظہار کیا، اگرچہ امریکہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور امریکہ کے بعض اخبارات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حملہ امریکہ کی ایما پر اور امریکہ ہی نے جھنڈی دکھائی جس کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بہرحال بہت سارے سوالات ہیں، اور آج ہم اپنی روایت سے ہٹ کر کہ پہلا سوال علی شہباز صاحب سے کریں، چلتے ہیں سیدھے دور دراز ترین علاقے یعنی لندن، جہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جعفر زیدی صاحب، ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، ظاہر ہے کہ اس طرح کے موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مقصد تھا اسرائیل کا یہ حملہ کرنے کا، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور اسی ایک سوال میں تیسرا جو گوشہ نکلتا ہے کہ اس کے نتائج کن پر مرتب ہو سکتے ہیں۔
جی، یہ حملہ کیوں کیا گیا، اس کے دو پہلو ہیں میرے خیال میں۔ ایک تو اسرائیل کا اپنے ہوم کنزمپشن کے لیے، انٹرنل کنزمپشن کے لیے، اور ایک عالمی سامراج کی مدد کے لیے جس کا وہ خود ایک حصہ ہے۔ عالمی سامراج کی مدد یوں کہ وہ جو دہشت گرد اس وقت پسپا ہو رہے ہیں اور شام کی حکومت کا وہ ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے، اگر یہ حملے کے جواب میں شام ریٹیلیٹ کرتا ہے اور وہ شام کی افواج جو اس وقت دہشت گردوں سے نبٹنے میں مصروف ہیں، وہ اگر ریٹیلیٹ کر کے اسرائیل کے اس حملے کے جواب میں وہ فوجیں جو آلریڈی تھنڈ آؤٹ ہیں اور تھن ہو جائیں، یعنی اور بکھر کے، اور تو اس میں پھر دہشت گردوں کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں اس حملے کا ایک مقصد یہ ہے کہ شام کی حکومت کو الجھایا جائے، شام کی فوج کو اس طرف الجھایا جائے، اور دہشت گرد جو ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے سوائے اس کے کہ انہوں نے معصوم انسانوں کا قتل کیا ہے، اس سے زیادہ وہ ابھی تک کچھ نہیں حاصل کر سکے، تو وہ شاید پھر شام کے اندر کچھ قدم جما سکیں۔
جی
دوسرا جو اس کا ہوم کنزمپشن ہے اسرائیل کے اپنے اندر کے لیے، کہ الیکشن کے بعد نتن یاہو نہایت غیر مقبول ان معنوں میں کہ اس بار بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا ہے انہیں اسرائیل کے اپنے عوام کی جانب سے، تو جب اسرائیل کہیں پر حملہ کرتا ہے اور جواباً ریٹیلیشن کا شور مچاتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایران اور شام اور دیگر ممالک سے شاید یا لبنان سے ہم پہ حملہ ہو، تو پھر پوری قوم نتن یاہو کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر یہ قومی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے دو اہداف نظر آتے ہیں، ایک تو ہوم کنزمپشن میں جو بہت سٹرونگ اپوزیشن اس وقت ان کی ہے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا، اور باہر حملہ کر کے باہر کی وہ تمام دہشت گردوں کی قوتیں جن کو سعودی عرب، قطر، ترکی اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مدد اور تربیت اور پیسہ حاصل ہے، ان کو، ان کے لیے ایک ایسی فضا کریٹ کرنا جس میں وہ اپنے اہداف या साम्राज्य के अहदाफ को आसानी से हासिल कर सकें। तो ये तो वो मकासद हैं जो मेरे ख्याल में ये दो मकासद सामने मुझे नजर आते हैं। इसके जवाब में अब होगा क्या अगर ये बात आगे चलती है और इसके रिपरकशंस क्या हैं, तो ये इसराइल के इस एक्शन पर ईरान, लबनान और रूस ने जिस शदीद रद्द अमल, और उसमें अरब लीग भी शामिल है, एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जबकि सारी दुनिया को ये पता चल गया कि अमेरिका का ओबामा का ग्रीन सिग्नल लेने के बाद ये इसराइल ने अटैक किया था। तो इस सूरत में क्या इसराइल अफोर्ड कर सकेगा कि रूस की वो मुखालफत को, यानी तहमुल उसमें है इतना कि वो रूस की मुखालफत को बर्दाश्त कर सके? मैं समझता हूँ कि नहीं। सिर्फ ये जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनको एक मॉरल सपोर्ट की हद तक ये बात होगी, और मैं नहीं समझता कि इसराइल इतना बेवकूफ़ है कि वो इसको आगे लेकर जाएगा और पूरी दुनिया को एक जंग में इतला करेगा, क्योंकि अगर ये जंग बनती है तो फिर ये पूरे रीजन में फैलेगी, फिर ये इसराइल और शाम या लबनान तक नहीं रहेगी, और इस रीजन में फैलने का नतीजा ये है कि फिर सऊदी अरब की बादशाहत को भी ख़तरा, जो कि ऑलरेडी वहाँ एक मज़ाहमत हो रही है, और जितनी ये बादशाहतें और सल्तनतें जिनको अमेरिका इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, फिर इनका सफाया, इनका बाकी रहना बहुत मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा सैयद साहब। और जी मैं फिर आ जाऊंगा, माफ़ कीजिएगा आपकी आपकी बात को मैंने काटा। अली शहबाज साहब, जो इस हमले के बाद शाम की हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाई है, तो क्या नहीं समझते कि ये उससे ज़्यादा मौसिर है कि शाम उसका जवाब देता?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन की खिदमत सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपने जो है इशारा जो किया, वाकई जो है शाम को चाहिए कि बहुत ही मुदब्बराना इकदाम यहाँ पे उठाए, क्योंकि शाम जो है जल्दबाज ने, इसराइल जो है बखूबी जानता था कि शाम जो है इस मौक़िफ़ में नहीं है फिलवक़्त कि इसराइल पर हमला करे, क्योंकि जैसा कि वहाँ पर खाना जंगी है। अच्छा, फिर जो है जैसा कि हमारे जैदी साहब ने भी इशारा किया, मैं इस बात का इजाफा करता चलूँ कि यहाँ पर जो है दो किस्म के ग्रोह, उनकी जो हिम्मतें पसपा हो चुकी थी। एक तो खुद इसराइल की जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी आज तक इतना लो ओपिनियन इसराइल की हुकूमत के बारे में खुद इसराइली आवाम में नहीं था इतना, क्योंकि इसराइल जो बिल्कुल बेबस है। और दूसरी तरफ देखिए आप, यानी पे दर पे जो शिकस्तें जो हो रही थी उन बागियों को या उन दहशतगर्दों को, जो हलब है, दिरा है, और जो इन अदलिब है, और जैसे मकामा वगैरह पर जो पेशकदमी किए थे और असलाह वगैरह से लोगों को जो हलाक किए थे, तो वो लोगों की जो है हिम्मतें जो है पस हो चुकी हैं। और रहा जो है, जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं, जो इसके अपोजिशन के जो लीडर हैं खतीब, उन्होंने भी खुल के ऐलान किया कि मैं हाफिज असद से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताइए, अब तक तो है इनकी ये अड़ थी, इनके हाफिज असद बशार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बशार असद से मुज़ाकरात करना चाहिए, अब तक इनकी अड़ थी कि बशार असद को हट जाना चाहिए। अमेरिका का भी यही जोर था, तुर्की का भी यही जोर था, शाम के खतर का भी यही जोर था, सऊदी अरब का ये जोर, बस इसराइल चाह रहा था कि एक मुखावमत का जो किलीदी जो रोल है वहाँ पे शाम का, वो ख़त्म हो जाए। अगर शाम, अगर खुदा न खास्ता वहाँ की हुकूमत अगर पसपा हो जाए या बदल जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इसराइल के लिए जो है बिल्कुल ये मंतहा अमन अमान का हो जाएगा और कोई ख़तरा नहीं होगा। जाहिर है तो इसराइल जो है चाहता था कि इस मौके पे, इस मौक़ में शाम पे हमला करे, शाम पे हमला करके इसका रद्दअमल देखे। एक तो इसका रद्दअमल, शाम तो इतना जो है बेवकूफ़ नहीं है, शाम की हुकूमत के फौरी जो है इसका अलहान, लेकिन शाम को बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करने का हक है, पूरा हक है शाम, और शाम कह भी चुका है कि जो है हम जो हक रखते हैं, लेकिन कब और किस मौके पर और किस रोज़ और कहाँ पर, ये शाम के अख्तियार में है। और शाम जो इतना जल्दबाज नहीं है कि फौरन कूद पड़े इसमें। और रहा देखिए आप, इस हमले से दरअसल नतन्याहू ये चाहता था कि इसराइली आवाम, जिसके हिम्मतें बिल्कुल पस्त हो चुकी थी, उनकी हिम्मतों को जो है बुलंद करें, ताकि कहें कि इसराइल भी कुछ चीज़ है, इसराइल में कुछ इख्तदार है, कुछ क़ुव्वत है, कोई हवाई जहाज है या जो भी हो, इसराइल मार सकता है। और वो लोग शाम को उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि जवाबी कार्रवाई जो है फिलफौर नहीं, फिलवक्त नहीं होगी, तो लिहाजा यहाँ दूसरी तरफ वो ये चाहता था कि शाम में جو باغیوں کے جو دہشت گردوں کے عزم و ارادے جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو جو ہے پھر نئی جو ہے روح وغیرہ بخشو ان کو، تاکہ وہ جو ہے پھر اسرائیل ہماری حمایت پہ ہے، امریکہ ہماری حمایت پہ ہے، سعودی عرب کا قطر کا پیسہ ہمارے ساتھ ہے، ترکیہ جو اسٹریٹجک الائنس ہمارے ساتھ ہے، یہ اہداف وغیرہ تھے ان کے. لیکن جو ہے میرا جو نظریہ ہے اس اہداف میں جو ہے یہ لوگ جو ہے ناکام رہے، نہ صرف جو ہے شام کے جو ہے مخالفین ناکام رہے بلکہ اسرائیل بھی جو ہے ناکام رہا، کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ جس طرح کی کارروائی کر کے اپنے اقتدار کو یا اپنی جو ہے ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے اونچا کر کے دکھائے، لیکن میں سمجھتا کہ اس میں اسرائیل کا کچھ فائدہ وغیرہ ہوا ہے. لہٰذا دیکھیں شام کا موقع جو ہے جہاں پہ ہماری گزارشات جو رپورٹس آ رہی ہیں بہت ہی جو ہے محکم مثبت ہے، شام کے افواج جو ہے تمام محاذات پہ جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور دہشت گرد جو ہے ان کے چہرے آشکار ہو چکے ہیں، جو ٹیررزم کے جو کاروائیاں انجام دی ہیں وہ جب بے قصور بے گناہ عوام کو، بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو ہلاک کیے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ورلڈ پبلک کے سامنے آشکار ہے. تو لہٰذا اس موقف میں جبکہ امریکہ میں بھی اوباما کی جو ہے سیکنڈ ٹرم سٹارٹ وغیرہ ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے اوباما کے فارن منسٹر اور جو ہے ڈیفنس سیکرٹری یہ دونوں جو ہے تبدیل ہو کے نئے چہرے وہاں آ رہے ہیں، تو اس کارروائی سے یہ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی جو ہے اسرائیل کا پشت و پناہ ہے. اور امریکہ آخر وقت تک چونکہ ہیگل کی گفتگو بھی تقریباً یہی تھی کہ جو ہے ہر صورت میں امریکہ اسرائیل کی پشت و پناہ ہی کرے گا، مدد کرے گا، کبھی اسرائیل کو جو ہے خطرے میں مبتلا ہونے کی اجازت ہی نہیں دے گا. تو لہٰذا یہ سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ان کا یہ حملہ تھا. اور رہا اس کا جواب جو شام جو ہے بالکل مدبرانہ طور پر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا بہت ہی صبر و تحمل سے جو اپنے احتیاط سے جو ہے اب تک جو ہے خاموش ہے شام، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو گھسیٹنا چاہتا تھا یا کھینچنا چاہتا تھا اس ٹریپ میں اسرائیل وغیرہ کے، وہ جو ہے امریکہ جو ہے اور اسرائیل جو ہے ناکام ہو چکا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اب اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور اور مشرق وسطی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں اگرچہ یہ صاف ہے کہ یہ حملہ امریکہ کی ایما پر کیا گیا اور گرین سگنل امریکہ سے ہی ملا تھا، لیکن خود امریکی اخبارات نے من جملہ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اس حملے کا الٹا نتیجہ اسرائیل کے لیے برآمد ہوا ہے، تو وہ کس معنوں میں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے جس امریکہ کے جس ریئیکشن کی یا گرین سگنل کی بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ میں جو اوباما کی سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہوئی ہے اس میں اوباما کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اسرائیل کی جو اس طرح کی انٹرفیرنس کی پالیسیز ہیں اس کے آگے کس طرح کا ریئیکشن دیتا ہے امریکہ. اس لیے کہ امریکہ میں جو حالیہ صدارتی انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک طرف مٹ رومنی تھے اور دوسری طرف اوباما، اور مٹ رومنی کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ جیوش لابی جو تھی امریکہ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس کی فل سپورٹ مٹ رومنی کے ساتھ تھی. اور اس الیکشن کمپین کے دوران ہم نے دیکھا کہ مٹ رومنی کے اور جیوش لابی کی جو لیڈرشپ تھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے تھے سامنے کہ جس میں امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو فلی سپورٹ کیا جا رہا تھا اور اسرائیل کی طرف سے مٹ رومنی کو فلی سپورٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اسی دوران امریکہ کے اندر جو پبلک اوپینین تھی دیٹ واز اگینسٹ مٹ رومنی اینڈ دیٹ واز اگینسٹ جیوش لابی، تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر لوگوں نے اوباما کا ساتھ دیا، اور اوباما کا ساتھ دینے میں ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ جیوش لابی اور اس کے جو امریکہ کی فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی میں اثر رسوخ تھا اس کے خلاف تھے. اب جو نیو ٹرم شروع ہوتی ہے اس میں نیو فارن منسٹر ہیں اور نیو ڈیفنس منسٹر، بلکہ ایک کیبنٹ جو نیو ٹیم آئی ہے اوباما کے ساتھ، اب اس میں ان کا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ امریکہ کی اپنی جو پبلک اوپینین ہے اس کے مطابق ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اپنے فارن پالیسی میں یا نہیں. اب چونکہ جو وہاں کا میڈیا ہے اس کا بھی فوکس اس بات پہ ہے کہ نیو جو فارن منسٹر آئے ہیں کیری، ان کی جو فارن پالیسی ہوگی کس بیس پہ ڈیزائن کی جائے گی. ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی جو کمٹمنٹ تھی اوباما کی خاص طور پر وہ یہ تھی کہ اب یوز آف پاور ناؤ ڈیسیژن میکنگ میں، اور دنیا میں کہیں وہ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ یوز آف پاور کے بغیر وہ حل کریں. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ایکسٹریملی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سینکشنز کو یوز کر کے ہم ایشوز کو ریزالو کریں. لیکن اب اسرائیل کی طرف سے جب ایک شام کے خلاف جو اٹیک کیا گیا کہ دیٹ واز کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لاء، اور اس میں چونکہ ماضی ہے ایک پورا اس کے پیچھے ہسٹری ہے، اگر اسرائیل کو جب اس نے عراق پر اٹیک کیا تھا، جب اس نے शाम के ऊपर इससे पहले अटैक किया था, इससे पहले इजिप्ट में और बाकी मुल्कों में जो सराउंडिंग कंट्रीज थी उन पे अटैक किया था। अगर उस वक्त कोई स्ट्रिक्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ से और बड़ी ताकतों की तरफ से इसराइल के अगेंस्ट कोई इकदाम लिया जाता तो आज कतन ये इकदाम इसराइल की तरफ से सामने ना आता। लेकिन मेरा ख्याल ये कि उस वक्त से एक लाइसेंस एक लिहाज से दे दिया गया इसराइल, जहाँ पर भी इंटरफेरेंस करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और इसकी वजह से इसराइल को जो माजी था उसको सामने रखते हुए इसराइल ने ये अटेम्प्ट की है। लेकिन इसके बाद अब बज़ाहिर तो अमेरिका की तरफ से कोई क्लियर इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो इससे तासर मिल रहा है वो ये है कि अमेरिका की सपोर्ट है इसमें, लेकिन अमेरिका की जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसके अगेंस्ट जाएगी, और मेरा ख्याल है वाशिंगटन पोस्ट की जो न्यूज़ है इसको इसी सेंस में देखना चाहिए।
जरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हमले से अगरचे शाम का नुकसान हुआ, उसके दो अफराद शहीद हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं और उस इमारत को और रिसर्च सेंटर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सियासी एतबार से कितना फ़ायदा होगा और ख़ुद इसराइल को कितना नुकसान होगा?
जी, ये फ़ायदा और नुकसान कई मायनों में होता है। अब सियासी एतबार से जैसे आपने कहा, इसमें यकीनन लूज़र जो है वो इसराइल है। दुनिया भर में जो रिएक्शन अब तक आया है वो इसराइल के इस एक्शन के ख़िलाफ़ है, ये एक यूनाइटेड नेशन चार्टर के अगेंस्ट, ये एक जारहाना एक्शन है जो कि, और शाम एक सॉवरन स्टेट है उसके अगेंस्ट ये एक हमला है एक रियासत का दूसरी रियासत के ख़िलाफ़। तो उसमें जितने भी बाशऊर और बासूल जो बहुत कम नज़र आते हैं उसके बावजूद हुक्मरान जो हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है। अब जहाँ तक अमेरिका के अपने अंदर के रिएक्शंस का सवाल है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के अवाम इसराइल के एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन इसराइल की जो फॉरेन पॉलिसी है विज़ावी पैलेस्टीनियंस वो उसके ख़िलाफ़ हैं। और ये भी आपके इल्म में है कि अमेरिका के यहूदी जो हैं वो भी इसराइल के ज़ायनिस्ट अज़ायम के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पर मेरे जलसों में, मेरे साथ कई मीटिंग्स में यहाँ के यहूदी, यहाँ एक तंजीम है जो कहलाती है ज्यूज़ अगेंस्ट ज़ायनिज़्म, सो तमाम यहूदियों को ये कह देना कि वो अमेरिका की पॉलिसी मुरतब करते हैं ये बात ठीक नहीं है। ज़ायनिस्ट लॉबी है जो कि पेंटागन के पॉलिसी मेकर्स के साथ असरअंदाज होती है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और अमेरिका का वजूद माशी तौर पे भी कायम नहीं रह सकता अगर अमेरिका उसको 18 बिलियन डॉलर्स हर साल ना दे, तो वहाँ की फौज, वहाँ के अवाम, वहाँ की इक्तसादियात का सारा दारोमदार अमेरिका पर है। और यहाँ तक ये बात अभी चंद हफ्तों पहले तक सामने आई हुई थी कि ओबामा ने ये बात ऐलानिया तौर पर कह दी थी कि अगर केमिकल वेपन्स सीरिया में हमें महसूस हुए या नज़र आए तो हम बाकायदा हमला करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि ओबामा हुकूमत जो है वो कोई इसराइल से अपना कोई फासला रखे हुए है, ऐसी बात कतन नहीं है। इसराइल और अमेरिका एक हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी एक है, मिडल ईस्ट के रीजन में उनके अजाइम एक हैं, और पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त जो तूफान उठा हुआ है, जो अफरा तफरी क्रिएट की गई है, उसके अंदर अमेरिका और इसराइल अपने और उसके साथ सऊदी अरब यकीनी तौर पे ये सब मिलकर अपने वो अहदाफ जो कि बहुत पहले इन्होंने ऐलान किया था कि वी आर गोइंग टू चेंज द पॉलिटिकल सीन ऑफ एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, उसको ये हासिल करने पर लगे हुए हैं। और शाम की हुकूमत का तख्ता उलटने का भी मकसद यही है। बाकी कुछ जगह पे इन्होंने हुकूमतें तब्दील करवा दी हैं, तो ये कह देना कि अमेरिका जो है वो बहुत फेंस पर बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका पूरी तरह उसका हिस्सा है जो इसराइल कर रहा है, और अमेरिका इस वक्त आलमी साम्राज्य का वो करैक्टर है जो हमें देखना चाहिए। आलमी साम्राज्य ने कितने उसके हाथ पैर पंजे हैं जिससे वो छोटी कौमों को जकड़ता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उसको देखते हुए अगर चीज़ों को हम देखें तो चीज़ें समझ आएंगी। ये जो छोटी कौमों पर जारहियत है, छोटी कौमों पर इस वक्त जो दहशतगर्दी से लेकर और फिजिकल नेटो के हमलों तक, ये सब इंटरलिंक्ड हैं और पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम करने का अमल जारी है। अब वो माली में मामला शुरू हो चुका, अफ्रीका पूरा अनस्टेबल करने की तरफ इनके अजाइम हैं। तो मामला सिर्फ शाम इज़राइल और मिडल ईस्ट का नहीं है
जी,
बहुत पूरे
शुक्रिया
ग्लोब पर
जी, बहुत शुक्रिया।
साम्राज्य अपना कब्जा करना चाहता है
जी, यकीनन ऐसे ही। मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। अली शहबाज साहब, आज से 1.5 साल पहले जब शाम में इस तरह की बदमनी शुरू हुई थी और मुनज़्ज़म तरीके से,
2 साल हो रहे हैं,
मार्च 2011 में
जी।
तो उसके कुछ ही अरसे के बाद इसराइली हुक्काम की तरफ से, मुझे सही नाम तो याद नहीं है लेकिन वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि अगर हम बशार असद का तख्ता उलटने में नाकाम रहे तो खुद इसराइल तबाह हो जाएगा। उनके इस जुमलों को आप मद्देनजर रखें
जी।
अब सूरत हाल वैसे ही तकरीबन होती जा रही है कि जिस तरह से दहशतगर्दों की पिटाई हो रही है, उनका कलाकमा हो रहा है और हर महाज पर उनको नाकामी हो रही है। चुनांचे इन्हीं नाकामियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब खुद कतर, सऊदी अरब और तुर्की, हत्ता अमरीका ने एक तरह से हाथ खींचना शुरू कर दिया और खुद जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनमें वहां पर जिस तरह से इंतशार और इख्तलाफ की कैफियत है और इनके कंट्रोल से, यानी तुर्की, अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के कंट्रोल से लोग निकलते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि इसराइल को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हम अब खुद नाबूदी की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने को बचाने के लिए, अपनी बका के लिए उसने इस तरह का इकदाम करने पर खुद को मजबूर समझा?
जैसा कि मैंने इशारा किया था इसके पहले गुफ्तगू में, जो ये हमला वगैरह था इसलिए फ्लेक्स ऑफ मसल्स है, यानी बताना चाह रहा था कि हमारे पास ताकत है, दम है, कुव्वत वगैरह है। देखिए आप, इंतखाबात जो इसराइल वगैरह में हुए बहुत ही एक स्लेंडर एक मेजॉरिटी से कामयाब हुआ इस इंतखाबात में। उसका मतलब यह है कि इसराइल के आवाम में जो है किसी हुकूमत का कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जैसा कि आपने इशारा किया कि ये लोग जो है रोज़ अव्वल से जो है इसी फिक्र में है कि जो है जब भी इस्लामी मुखावमत यहाँ पर जो है मजबूत हो जाएगी, मुस्तहकम हो जाएगी, तो इसराइल को जो है बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देखिए आज जो है तकरीबन 2 साल पहले जो मुखावमत का जो लहर जो शुरू हुई थी मिस्र में, तुनिसिया में और फला फला, ये सब किसके असरात थे? ईरान के इंकलाब के। ईरान में जो आज से 34 साल पहले 1979 में इमाम खुमैनी की रहबरी में, क़ियादत में जो इंकलाब आया था उसी के असरात थे। जो असरात जो आज जो है अपने गुल वगैरह इस मंतक में यहाँ पर खुला। इसलिए ये जो है अमरीका की यही ताकत, ये साजिश अभी भी जारी है कि मिस्र के इंकलाब को हाईजैक किया जाए, तुनिसिया में जो है वहाँ के जो अहदाफ वगैरह थे अवाम के उसको कुचल दिया जाए, या मसलन दूसरे जगहों पर बहरीन के इंकलाब को तो कुचल कर रखे हैं वो लोग। हालांकि जो है हमारा को भरपूर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहरीनी अवाम जो है अपने अजायम में उसमें कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ इस बात का इशारा करता चलूँ कि इंकलाब ईरान में जो है 1979 में ऐसे मौके पर हुआ था कि 1 साल पहले 1978 में मिस्र के अनवर सादात और आपके मेनाकिम बेगिन जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका की क़ियादत में कार्टर की सरपरस्ती में कैंप डेविड अकॉर्ड पे दस्तखत किए थे। वो तो बिल्कुल क्या कहेंगे आप, यानी बहुत शर्मनाक अकॉर्ड था जिस पर जो है अरब और अपनी जो है ये अपनी आबरू वगैरह मिस्र वगैरह बेच दिया था। उसके 1 साल बाद जो है इंकलाब ईरान में हुआ। अच्छा, इंकलाब में जो हुआ ईरान में, तो अरब ममालिक में पहली ममलिकत जो इस ईरान के इंकलाब को जो तस्लीम की या जो अपनी तायद की जो है हाफिज़ असद की हुकूमत थी। हाफिज़ की बहुत दूरंदेशी थी, बल्कि उन्होंने जो है वो ज़माने में सऊदी अरब है और खलीज फ़ारस के जो ममालिक है या दूसरे ममालिक, मुझसे तो रबित ख़त्म थे तो टूट चुके थे, लेकिन दूसरे अब हम अरब ममालिक को यही बताना चाह रहा था कि इनकलाब जो ईरान में हुआ वो हमारे मफाद में है, अरबों के मफाद में, इस्लाम के मफाद में, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए। अगर हम जो है मुत्तहद हो जाए, हमारे अख्तलाफात को जब रफा दफा करें तो हम इसराइल के खिलाफ एक मजबूत महाज खड़ा कर सकते हैं। उनका रोज अवल से यही था, लेकिन जो है अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस था, अमेरिका की इतनी साजिशें थी, और फिर जो है वक्त में गुंजाइश वगैरह भी नहीं है, क्योंकि असल जो अरबों के जो रेजिम्स वगैरह है, जो हुक्काम है, वो तो सब बिके हुए हैं। बल्कि बिके हुए क्या होता, अमेरिका की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। पहले जमाने में जो है बरतानिया की तरफ से उनकी सल्तनतें कायम की गई थी, आज वो अमरीका की सर्विस में अमरीका की नौकरी में है। तो लिहाजा उनसे तवक्को रखना ही जो है बेकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया था कि सद्दाम को हुक्म मिला, दस्तूर मिला अमरीका की और बरतानिया की तरफ से कि ईरान पर हमला करें। सद्दाम ने अमरीका ईरान पर हमला किया, इसराइल के फायदे में था हमला। ये जो है क्या कहेंगे आप, रिएक्शन जो अरब स्टेट्स थे उनके फायदे में था, क्योंकि वो और इसराइल के अहदाफ एक ही हैं। जो अमरीका के हदफ, अमरीका का जो हदफ है वो इसराइल का हदफ है, वही जो है ये जो रिएक्शन अरब स्टेट्स उनका हदफ है। तो लिहाजा इन्होंने जो है रोज अवल से ये ताकत की कि हाफिज अजहर का जो है आइसोलेट किया जाए, बॉकर किया जाए। चुनाव जो है जंग के दौरान भी है, जंग तहमीली कह रहा हूं मैं, 8 साल जी हाँ, तो ईरान पर नाफिज की गई थी। पहला काम हाफिज अजहर ने किया, जो पाइपलाइन जाती थी इराक की ऑयल पाइपलाइन किरकुक वारा से बनियास पे, जो मेडिटेरेनियन सी का जो कोस्ट वारा है, उसको फौरन बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा इकदाम था उनका, ताकि जो है सद्दाम के जारहाना इकदाम को जो है उसको वहाँ रोके। लेकिन जो है सद्दाम अपनी पूरी जो है या अमेरिका की और इसराइल की खिदमत में वो गुजार दिया। उसके बाद में जो है जंग खत्म वगैरह हुई, ईरान का जो है पल्ला भारी रहा, और ईरान जो कहता था जो है वो आने लगा। उसके बाद में देखें आप, हालात बदलते गए, बदलने के बाद में इसराइल का मौकफ जो है कमजोर होते गया, कमजोर होते गया, हत्या के जो है वो इस्लामिक अवेकनिंग की लहर में बिल्कुल मुख्तसर था, जो तेजी के साथ आगे
जी हाँ
तो इसलिए मतलब तो लिहाजा इस सूरत हाल में, जबकि जो है वो लोग देख चुके कि इसराइल शाम का और ईरान का इतना मजबूत और मोहकम रिश्ता है, उसको भी तोड़ नहीं सकते। तो लिहाजा उन्होंने कुछ बागियों को, कुछ दहशतगर्दों को पैसे वगैरह देकर, जिसमें अमरीका भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, सऊदी अरब खतर है, उन्होंने वहां पर बगावत खड़ा कर दी। और वो बगावत जब कुचले जा रही है तो इसराइल जो है बेबस मायूस होकर हमला वगैरह कर रहा है, लेकिन इसके भी जो है उसके नफे में नहीं रहेगा, इसी के जो है खिलाफ ही होगा इसका नतीजा।
बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर एक बार लंदन चलता हूँ, कंदील साहब से माजर के साथ थोड़ी देर बाद उनकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जैदी साहब लंदन में हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रिसर्च सेंटर जिस पर हमला किया गया है, इसके बारे में कहा जाता है कि दहशतगर्दों ने, अलकायदा ने, या जो दूसरे दहशतगर्द अनासिर हैं, ग्रोह हैं, 12 हमला किया और 12 कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और शामी फौज ने हमेशा पसपा कर दिया। अब इसराइल ने इस तरह से हमला करके उसको तबाह और मुनहदिम करने की कोशिश की, तो क्या नहीं समझते कि इस नुक्ते पर आकर अलकायदा, इसराइल, दहशतगर्द और इसराइल सब एक हो गए हैं? या दूसरे लफ्ज़ों में, वो ममालिक जो इन गुरोहों की हिमायत कर रहे हैं, कतर और सऊदी अरब, वो इस मसले में इसराइल के साथ एक हो गए इस नुक्ते पर?
जी, ये बिल्कुल एक हैं और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। न सिर्फ इस इमारत पर हमला, बल्कि शाम बजाय खुद पर जो हमला है वो इन सब की मुश्तरका यानी साजिश कहा जाए या मुश्तरका कोशिश कहा जाए, ये सब उसका नतीजा है। और ये शाम के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, लबनान के खिलाफ, या वो तमाम अकवाम जो सिर उठाकर जिंदा रहना चाहती हैं, जो साम्राज्य की तसल्लुत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती उस तरह से, उन टर्म्स पर जिस पर के साम्राज्य उनको डिक्टेट करता है, तो ये इत्तहाद उन सब के खिलाफ है। और ये इत्तहाद उन तमाम अकवाम और अफराद के खिलाफ है जो इस वक्त अलकायदा, सलफीज की जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसको प्रिवेल और पूरी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में फैलाने के खिलाफ है। ये तमाम वो अफराद अकवाम जो के सऊदी अरब की, अमरीकी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उस हवाले से अपनी हुकूमतें वो उस तरह से कायम नहीं करवाना देना चाहते, ये सब उनके खिलाफ एक साजिश है। इसराइल उसका हिस्सा है और ये शौरी तौर पर सब मिलकर ये सब उसमें शामिल हैं, सिर्फ स्ट्रेटजिकली नहीं है बल्कि कॉन्शियसली ये एक हदफ हासिल करना चाहते हैं। और बिलखसूस ईरान चूंकि एक ताकत के तौर पे इमर्ज कर चुका है, तो ईरान का रास्ता रोकना और ईरान के जो इत्तहादी हैं, जो ईरान के दोस्त हैं, उनको कमज़ोर करना, ये इनका हदफ है। और उस हदफ को हासिल करके फिर ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में अपना स्कूल ऑफ थॉट, अपना अमरीकी ब्रांड का इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। और ये मेरा ख्याल है मुस्लिम अकवाम और अवाम को मालूम है, मुसलमान हुकूमतों के जो हुक्मरान हैं, जो इस वक्त दुमछल्ला है अमेरिका के, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अल्टीमेट अवाम की होती है और अल्टीमेट फतह अवाम की होगी। इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, टर्की और इस तरह के जो इनके अलाई हैं और नेटो के इत्तेहादी, अल्टीमेट फतह अवाम की है, इनके खिलाफ है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। डॉक्टर साहब, माजा चाहता हूँ, आपको काफ़ी देर तक मुंतजर रखा मैंने। मैं यहाँ पर यह पूछना चाहूँगा कि जो शाम मुखालिफ ग्रोहों का इत्तेहाद है, उसके सरबरा माज अल खतीब ने अभी बुध को अपने एक बयान में कहा है कि हम शाम की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ पर इस नुक्ते की वजाहत करता चलूँ कि माज अल खतीब बार बार इससे पहले ये कहते रहे कि हम उस वक्त तक शाम की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ऐवान इख्तदार में बशार असद होंगे। तो अब अचानक आमादगी का ऐलान, अगरचे एक मुस्बत कदम है, आप किस नज़र से देखते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो भी अभी तक कोशिश सामने आई थी उसमें बातचीत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी ताकतें थीं, अमेरिका समेत बाकी जो ताकतें थीं, इन्होंने शाम के अंदर जो अपोजिशन ग्रुप के नाम पर यानी बागियों को उन्होंने जो असलाह दिया और उनको ट्रेनिंग दी, उसकी वजह से जो शाम के अंदर एक कशीदगी पैदा हुई और उसको फिर जंग की हालत में सिविल वॉर की शक्ल दे दी गई, उसमें बेगुनाह लोगों के मारे जाने के बाद यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसकी क्लियर वायलेशंस होती रहीं। और इसमें यूनाइटेड नेशन का हमेशा ये स्टैंड हमने देखा कि वो बातचीत पर जोर देते रहे, लेकिन बड़ी ताकतों का चूंकि असर रसूख था इसलिए ये काबिल अमल नहीं हो पाया। लेकिन अब सिचुएशन ये चेंज आई है कि जो बिल्कुल मैं इसको कंपेयर करूंगा, एक तरफ इराक के साथ जब इराक के जरिए ईरान के ऊपर एक जंग इम्पोज की गई थी और जंग के आखिरी मराइल में, 8 साल जंग के आखिरी मराइल में हमने देखा कि जब सद्दाम और उसकी फोर्सेस बिल्कुल कमज़ोर हो गए और उनकी शिकस्त सामने नज़र आ रही थी, तो उस वक्त हमने देखा कि अमेरिकन फोर्सेस बराह रास्त ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस हुई और खलीज फारस में उनकी फोर्सेज आने के बाद कई ईरानी फोर्सेज के साथ उनका टकराव भी हुआ और उसके बाद ये जंग अपने अख्ताम की तरफ बढ़ी और ईरान ने उन्होंने खुद यानी मुजाकरात की पेशकश मानी सद्दाम ने। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जो वहाँ के बागी ग्रुप हैं उनको हर जगह पर नाकामी हुई और ख़ासतौर पर जिस तरह जमाराया जो ये जिस सेंटर पर जो जिस रिसर्च सेंटर पर इसराइल ने हमला किया है, ये दमिश्क के शुमाल मगरब में एक रिसर्च सेंटर है और इसकी अहमियत ये है कि इस तरह के जो रिसर्च सेंटर शाम के अंदर है, इन्होंने डोमेस्टिक जो उनका लोकल इंडिजिनस एक पोटेंशियल था उसकी बुनियाद पर जो हालिया बगावत उठी थी इसको कुचलने में इन सेंटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इन सेंटर्स को वो इसलिए तबाह करना चाहते थे कि शायद इस तरीके से वो अपना मकसद हासिल कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी कुछ आम लोगों को उठाकर उनको जिहाद के नाम पर या उनको कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ाने के लिए जब तैयार किया गया और मकसद हासिल करने के बाद अब वही लोग साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में कई जगहों पे फैल गए और बल्कि अफ्रीका तक पहुंच गए और उन्हीं लोगों की वजह से तमाम मुल्कों में अनरेस्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ शाम में भी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि जो बागी ग्रुप है, एक तरफ तो वहाँ पे शिकस्त की वजह से आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इलाके के दीगर ममालिक हैं, ख़ासतौर पर टर्की है जहाँ पर इनके अड्डे भी कायम हुए हैं और इनकी प्रेजेंस भी है, कतर है और बाकी जो इस बहरीन है और बाकी रीजन जितने सऊदी अरब तक के ममालिक हैं, उनको ये खतरा है कि यहाँ से बाकी अरब मुल्कों से भी कई नौजवानों को शाम में ले जाया गया और अब अगर उनको शिकस्त होती है शाम के अंदर तो वो लोग वहां से निकलेंगे और फिर पूरे रीजन में फैल जाएंगे। जब वो पूरे रीजन में फैलेंगे तो हर मुल्क में जाकर वो वहां पर इंस्टेबिलिटी का बायस बनेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि प्रेशर डाला गया होगा मौजल खतीब जैसे लोगों के ऊपर कि वो अब मुज़ाकरात की जानब आएँ और वहीं के अंदर इस मसले को रिजॉल्व किया जाए, इसलिए कि एक दो साल की जद्दोजहद और कोशिशों के बाद प्रेशर के बावजूद उन्होंने देखा कि जो बशार असद की हुकूमत है उसका जो असल सेंटर है वह अभी तक महफूज है, हालांकि कई लोगों को वहाँ से बगावत पर मजबूर किया गया और वो यहाँ से छोड़ कर चले गए, लेकिन जो सेंटर है वो अभी तक मजबूत है। अब मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि एक तो जो पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन है और खलीज फारस के ममालिक है, इसको बेचैनी से बचाने के लिए जो वहां के बागी इनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अब मुज़ाकरात की तरफ आए।
डॉक्टर साहब,
अगर मुज़ाकरात होते हैं तो जाहिर है कि उनकी कोशिश होगी कि पोलिटिकल जो रूल है उसमें उनको शेयर दिया जाए, तो मैं समझता हूं इसको ये वही चीज है जो दो साल पहले खुद बशार असद ने आम इंतखाबात का मौका देकर अपोजिशन ग्रुप्स को कहा था कि आप आ जाएं, और अगर ये ऐसे नहीं आते तो उसमें उनको खुद नुकसान उठाना जैसे पहले पड़ा था आइंदा भी नुकसान उठाना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी आप ही से करूंगा लेकिन जवाब मुख्तसर चाहूंगा क्योंकि सिर्फ मेरे पास 3.5 मिनट है और एक सवाल शहबाज साहब से भी करना है। हिजबुल्लाह के सरबरा नसरुल्लाह साहब ने कुछ दिनों पहले अपनी तकरीर में कहा था कि अमरीका ने शाम में अलकायदा के लिए जाल बिछा रखा है ताकि वो उनका वहां पर कलाकामा हो सके और उनका सफाया हो सके, यानी अमेरिका क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो रहा है?
मैं समझता हूँ कि जो अटेम्प्ट हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की तरफ से आई थी और एक गैर सरकारी तंजीम होने की हैसियत से उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया था और उसी बुनियाद पर ये पैटर्न उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की शाम के अंदर, तो उनको बशार असद की हुकूमत के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जाहिर है कि अब अलकायदा हो या हिजबुल्ला हो, इनका आपस में कंपेरिजन किसी सूरत नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कि अगर अलकायदा या किसी और ग्रुप पर बात की जाए तो इस तरह की अगर वो नेटवर्क बनाने की कोशिश की है आज तक, तो माजी के तजर्बा से पता चलता है कि खुद उनको नुकसान हुआ है इसका, अगरचे उसके बाद एलिमेंट जो है अभी तक उनके हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो खुद इस रीजन में जो उनके मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचेगा।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अली शबाज साहब। वक्त हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट का है, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल है जिस तरह से अरब लीग, रूस, चीन और खास तौर पर इस्लामी जमहूरी ईरान ने मौकिफ अपनाया इस हमले के बाद, आप नहीं समझते कि मुस्लिम रायम्मा में और अरब रायम्मा में इसराइल के खिलाफ नफरतों में और इजाफा हुआ और बशार असद की हुकूमत के तई हमदर्दियों में इजाफा होगा?
बल्कि आप देखिए कि हत्ता कि यूरोप में और अमेरिका में जो रायामा है वो इसराइल के खिलाफ होती जा रही है किसी में किसी उनवान वगैरह से, एक तो अमेरिका की जो अंदाजन सपोर्ट है बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट है, दूसरी जो इसराइल के जो जारहाना इकदाम है इसराइल के क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसराइल जो हर मौके पर हर मरहल पर हर मोड़ पर जो इंटरनेशनल लॉज है उसके खिलाफ वर्जी करते गया, और साथ ही साथ लोगों को ये मालूम हो चुका कि बशार असद जो है उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और जो है वहाँ बगावत को चलने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, और जैसा कि जो है खुद हमारे मेहमानों ने भी इशारा किया इस तरफ के उन्होंने पहले तो जो है बिल्कुल मुज़ाकरात की दावत दी थी उनको, ये और बात है कि जो है अमेरिका और अमेरिका के हलीफ और इसराइल वगैरह कतर सऊदी अरब तुर्की में जो है कुछ बाजों को जमा करके हमला वगैरह करवाए, तो लिहाजा जब उनके नाकाम हो चुके हैं और उनके जराए पे हत्या के जो आपके जो इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर्स हैं मगरबी मीडिया के उन्होंने भी जो है हलब में, इदली में और दूसरे मकाम हम्स में जहां भी इनके जो दहशतगर्दी के जो कार्रवाई थे जो बच्चों का औरतों का और जो है बेखजूलों का जो कत्लेआम जो हुआ उसके जो तस्वीरें उनका जो अक्स वगैरह जो है उन्होंने जो है पब्लिश वगैरह किया है उसका बिल्कुल जो है मनफी असर इस अमेरिका और इसराइल और सऊदी अरब और तुर्की और कतर की कार्रवाई के खिलाफ हुआ, और साथ ही साथ जो है खुद मगरबी आवाम ये जान लिया कि बशार असद बनवान एक सदर ममलकत वो अपने मुल्क के इस्तेकाम के लिए मुल्क में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहा है और उनको सारा हक भी है उनको, हत्या कि जो मुस्लिम ममालिक में जो राय वगैरह का जो अगवा किया गया था जो फरेब दिया गया था राय आमा को वो लोग भी जो है आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि नहीं अब तक जो हमारे को जो मीडिया के जरिए से CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, अल अरबिया हो तो फीड किया जा रहा था बिल्कुल गलत था,
बहुत शुक्रिया
के खिलाफ था।
वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाजीन, आपने एक बार फिर इसराइल की जारियत का दूसरों की आंखों से बहरहाल तमाशा देखा, अमेरिका और जो मगरबी ममालिक हैं वो खामोश बैठे हुए हैं लेकिन जिस तरह से शाम की हुकूमत और शाम की आवाम ने सब्र और तहमुल और मुदब्बराना तरीके और रविश का मुजाहरा किया है उससे न सिर्फ ये कि उनको सियासी फ़ायदा हुआ है बल्कि اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کے گرد رائے عامہ کا گھیرا اور تنگ تر ہوتا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر دہشت گردوں کو صفایا ہو جانے کے بعد شام ایک بار پھر ماضی کی طرح علاقے میں مقتدر اور فلسطینی عوام کی حمایت کا سب سے بڑا علمبردار بن کر ابھرے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سیزوی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔